प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड के कार्यक्रम आज सवेरे के साथ। दोस्तों, हम अपनी तैयारी करके आए हैं ताकि आपको तैयार कर सकें दिन भर के लिए। रोज की तरह आज भी हमारे पास हैं आपके लिए रोचक खबरों का खजाना और ढेर सारी जानकारियां। आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हलचल, बताएंगे मौसम का हाल और चलेंगे इतिहास में थोड़ा पीछे और याद करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों को भी। प्रोग्राम के इस अंक में मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार सरफरोजी। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, लाइक सरफरोजी सेड, दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock वी आर गोइंग टू गेट यू एंगेज्ड। You will be enjoying this entire program, you will be enjoying the information and a few some songs and dialogues maybe towards the end of the program. And because today is Monday, don't worry about it. It's time to figure out the things that you are confused about. You always have friends to talk to, and if nothing feels right, then maybe sip your tea or coffee and relax your mind. It's a new day, a new week, a new opportunity for something special to happen. So do great things today and make it as beautiful as you can. So let's begin our program with the headlines.
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में पिछले 3 वर्ष में लगभग 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी शामिल है। पद पर रहते हुए विश्व में सर्वाधिक फॉलोअर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। वे अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अन्य विश्व नेताओं से काफी आगे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के फॉलोअर्स की संख्या 3,81,00,000 है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे इस सक्रिय माध्यम से जुड़कर बहुत ही प्रसन्न हैं तथा विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना, सुझावों और लोगों की शुभकामनाओं से प्रेरणा लेते हैं।
India's retail digital payment is likely to double to $7 trillion by 2030, says a joint study by Kearney and Amazon Pay. India's digital payments for retail transactions have grown to $3.6 trillion in the financial year of 2023-24, compared to $300 billion in the financial year 2017-18, according to the study named How Urban India Pays. UPI transactions were introduced in India on April 11, 2016. The digital transaction levels have seen a 138% growth in the Unified Payment Interface, that is UPI payments, levels from the financial year 2018 to 2024. The report also states that India's e-commerce market was worth $75 billion to $80 billion in 2022, which is expected to grow 21% by 2030.
विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार 15,352 करोड़ रुपए शेयरों में और 8,484 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए। इससे 12 जुलाई तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का कुल निवेश 23,836 करोड़ रुपए हो गया।
After 34 years, the doors of ancient temple Uma Bhagwati were opened for the devotees in South Kashmir's Anantnag district yesterday. Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai threw open the temple for devotees at Brari Angan in Shangus area of Anantnag. During the reopening ceremony, the idol of goddess Uma brought from Rajasthan was placed in the sanctum sanctorum. The Union Minister said that the government's commitment towards a developed Jammu and Kashmir and its own syncretic culture shall go a long way to develop J&K into a prosperous and peaceful region. Notably, Uma Bhagwati Temple at Brari Angan in South Kashmir is an ancient shrine where devotees used to come in large numbers from different parts of Jammu and Kashmir to pay obeisance to goddess Uma Bhagwati.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। एनटीए ने बताया है कि विषय कोड का उल्लेख करते हुए उन्हें ईमेल भेज दिया गया है और जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने कहा कि विशेषज्ञों से मिले फीडबैक के आधार पर उत्तर कुंजिका तैयार की जा रही है। इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा मई महीने में 379 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर हुई थी।
द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन अंडर द एजेस ऑफ डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश on Tuesday, that is tomorrow. This event commemorates the 75th anniversary of the adoption of the Indian Constitution and India becoming a republic. The campaign aims to promote understanding of the Constitution and raise awareness about legal rights. During the event, the Hamara Samvidhan, Hamara Samman portal will be launched to encourage citizen participation. This portal will serve as a knowledge repository, offering citizens easy access to information to foster awareness about the Constitution and legal rights.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया रैली में सुरक्षा उपायों की एक स्वतंत्र जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इस हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था। व्हाइट हाउस से बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इस घटना की गहन जांच के लिए रैली में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की एक स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्षों को अमरीका के लोगों के लिए पारदर्शी बनाया जाएगा।
KP Sharma Oli will be sworn in as Prime Minister of Nepal today. The swearing-in ceremony will be held at Sheetal Nivas, the main building of Rashtrapati Bhavan in Kathmandu at 10:45 a.m. Indian time. Along with Mr. Oli, a group of ministers will also be inducted into the cabinet. He was appointed Prime Minister for the third time yesterday to lead the new coalition government.
और अब बात खेल जगत की, जहां फुटबॉल में स्पेन ने यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। निको विलियम्स ने स्पेन की तरफ से पहला गोल किया, लेकिन इंग्लैंड के कोल पामर ने 73वें मिनट में गोल करके मैच बराबरी पर ला दिया। अंत में मिकेल ओयारज़ाबल के 86वें मिनट के गोल ने स्पेन को विजयी बढ़त दिला दी।
And if we talk about tennis in Wimbledon tennis, Carlos Alcaraz of Spain has clinched the men's singles title, defeating Novak Djokovic of Serbia 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz comfortably won the first two sets 6-2, 6-2, but Djokovic bounced back in the third. However, the Spaniard clinched the third set as well. This was Alcaraz's second appearance in the Wimbledon final, while Djokovic is a 7-time champion of the championship. And in the mixed doubles finals, the 7th-seed Polish-Taiwan pair of Zhang Zelinsky and Shi Su Wei claimed their second Grand Slam title of the season. They defeated the Mexican duo Juliana Olmos and Santiago Gonzalez in straight sets, winning 6-4, 6-2.
और श्रोताओं, अब आज सवेरे में समय है प्रमुख महानगरों का हाल जानने का। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी तन्वी।
Let's begin with Chennai. The State Health Department will study the prevention and management of diabetes in collaboration with Johns Hopkins University, Baltimore. The university has been actively involved in research on diabetes prevention and treatment. The minister said that a MOU has been signed for research collaboration. The prevalence of diabetes in Tamil Nadu is around 14.4% and can reach up to 25% in cities, according to national surveys, and all three memorandum of understandings will benefit the state for senior doctors and faculty from the university will support and train doctors in Tamil Nadu. Some more news from Chennai. Tamil Nadu NCC Directorate won silver medal in All India Shooting Competition for this year. NCC Directorates across India competed in the annual event held at Tiruchirappalli, conducted by the NCC Directorate of Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman and Nicobar. The week-long competition was concluded with fanfare. 300 NCC cadets from 17 NCC directorates participated in the event. The teams won 3 gold, 3 silver and 3 bronze medals. And if we talk about Bangalore, the 5-time world chess champion Vishwanathan Anand will be the chief guest at the convocation of Indian Institute of Science in Bangalore today. Senapati Chris Gopalakrishnan, the chairman of IISC Council, will be the guest of honor. Total 1,136 degrees will be awarded during the ceremony today. Among them are 465 research degrees, 571 master's course degrees and 100 undergraduate degrees will be conferred on the students. Gold medals will be awarded to 57 students for their academic excellence. The premier research-oriented institute in Bangalore offers PhD and integrated PhD programs. Several master's programs of M.Tech, M.D.E.S. and M.M.G.M.T., a 4-year Bachelor of Science research program and a B.Tech in Mathematics and Computing. Now let's talk about Hyderabad in Telangana. Heavy rain accompanied by gusty winds lashed several parts of the state yesterday. Nilwai of Mancherial district recorded the highest rainfall of over 157 mm, while several villages in Jaishankar, Bhopalpalli district recorded above 100 mm. Normal life has been thrown out of gear in several areas in Hyderabad due to sudden downpour last evening. Meanwhile, GHMC's disaster response forces have asked the citizens to dial helplines on 040-211-11111 or 90001136667 for any rain-related assistance. So these were the updates from three cities, Chennai, Bangalore and Hyderabad, Sarfarazi. What all do you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी तन्वी, शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC आज से 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। ये सर्वेक्षण 14 अगस्त तक चलेगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मेट्रो सेवाओं के अलग अलग घटकों पर यात्रियों से जानकारी जुटाना है। सर्वेक्षण के दौरान यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से अलग अलग विषयों पर प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसमें सेवाओं में सुधार संबंधी सुझाव भी शामिल हैं। सर्वेक्षण का हिस्सा बनने के इच्छुक यात्री दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट www.delhimetrorail.com पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर है दिल्ली से सटे फरीदाबाद से, जहां अब सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी भी डाकघर या बैंक में लड़कियों का खाता खुलवाया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की को गति देने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत मात्र 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है और खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता की फोटो, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। निर्मा विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन प्रसार भारती और IIT दिल्ली ने किया। विजेता टीम वियतनाम के क्वान डिन में अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस कार्यक्रम में 45 से अधिक कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। और अब चल रहे हैं मुंबई की तरफ, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और वर्तमान राजनीतिक स्थिति और दोनों राज्यों से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र पर विशेष जोर देने के साथ दोनों राज्यों से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचे और अन्य व्यावसायिक विकास के अवसरों की प्रगति पर चर्चा की। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगबुड़ी नदी में बाढ़ के कारण कोंकण क्षेत्र के खेड़ तालुका में 147 लोगों को निकाला गया, जगबुड़ी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिपलून में वशिष्ठी नदी, राजापुर में कोडावली और लांजा तालुका में मुचकुंडी नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। मंडनगढ़ तालुका में भारजा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे चिंचघर मंडीवली पुल पर यातायात प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण रत्नागिरी जिले के दीवान खावटी और रायगढ़ जिले में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। नासिक में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगली खबर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, जहां एक भारतीय के पास से 4.5 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,95,00,000 रूपये है। ये व्यक्ति बैंकॉक से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था। इसके पास मौजूद खाने पीने की चीजों और खिलौनों के डब्बों के अंदर गांजा छिपा हुआ पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और एक खबर तन्वी कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल में वन महोत्सव कल से शुरू हो गया है। ये उत्सव एक सप्ताह तक चलेगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग राज्य भर में आम लोगों के बीच निशुल्क पौधे बांटेगा। कोलकाता के अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान में कल चिंपैंजी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित आगंतुकों के लाभ के लिए ब्रेल बैच का अनावरण किया गया। इंटरनेशनल आई फाउंडेशन द्वारा दान किए गए ऐसे 20 बोर्ड चिड़ियाघर में महत्वपूर्ण बाड़ों के सामने लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमती बीरबा हांसदा ने की और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों ने इसमें भाग लिया। और अब कार्यक्रम में वक्त है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तो यहां बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और तन्वी, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा है?
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट बेंगलुरु एंड हैदराबाद, बोथ आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद ईदर लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर बेंगलुरु वॉज 20 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। If we talk about Hyderabad, the temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और तन्वी, इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें, एक बहुत ही खास दिन आज मनाया जा रहा है और ये दिन है विश्व युवा कौशल दिवस का। ये कहना तन्वी गलत नहीं होगा कि हमारी दुनिया नौजवान लोगों पर टिकी है। जितने मजबूत हमारे कंधे होंगे, उतनी ही मजबूत ये दुनिया होगी। और इसलिए युवाओं को नई राह दिखाने और प्रगतिशील बनाने के लिए हर साल 15 जुलाई को कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने युवा लोगों को उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत की। और तन्वी, अगर हम भारत सरकार, अपनी सरकार की बात करें, तो यहां पीएम मोदी और पूरी सरकार युवाओं के कौशल पर बहुत जोर दे रही है। देश भर में जगह जगहों पर कई कौशल केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को कई तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा कई और योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, चाहे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस हो या संकल्प जैसे कार्यक्रम हो, जहां युवाओं को कई तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सके और आने वाले वक्त में उन्हें कम आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़े।
एब्सोल्युटली, आई कुडंट अग्री मोर दैट यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन, नॉट जस्ट द नेशन बट द एंटायर वर्ल्ड। एंड इफ देयर स्किल्स विल बी डेवलप्ड, देन दे कैन वर्क एनीवेयर। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट बीइंग अनएम्प्लॉयड। एंड इफ दे कैन वर्क, दे कैन अर्न, दे विल हैव द कॉन्फिडेंस टू लिव अ लाइफ पीसफुली एंड as in the way they want.
और तन्वी युवा जो है वो इस दुनिया को जैसा चाहे आकार दे सकते हैं, अच्छे कौशल के साथ युवा दुनिया में सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, वो ज्यादा शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। और इस साल विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय भी कुछ इसी तरह है। इस साल इस दिवस की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। इस साल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, तो हमारी अपने युवा श्रोताओं से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन कार्यक्रमों का हिस्सा बने और साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई कई विभिन्न कौशल योजनाओं का भी लाभ लें।
सो यस, अ वेरी हैप्पी यूथ स्किल्स डे।
और श्रोताओं, अब चलते हैं इतिहास में थोड़ा पीछे और जानते हैं आज की बड़ी घटनाएं। आज ही के दिन 1910 में एमिल क्रेपलिन ने एलोइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया। एलोइस अल्जाइमर ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस बीमारी का विवरण दिया।
इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 1916, इट विटनेस्ड द बर्थ ऑफ बोइंग कंपनी फाउंडेड बाय विलियम बोइंग इन सिएटल वाशिंगटन।
और तन्वी, जब हम मुंबई के नजारे देखते हैं तो उसकी सड़कों पर हमें जो बेस्ट बसेस दौड़ती नजर आती हैं, वो उनकी शुरुआत आज यानी 15 जुलाई के ही दिन 1926 में हुई थी।
एंड फॉर ऑल द ट्रेवलर्स, दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज फॉर ऑल ऑफ यू। इन द ईयर 1933, एन एविएटर नेम्ड वाइली पोस्ट एम्बार्क्ड ऑन अ फर्स्ट सोलो फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। दिस डेयरिंग एंडेवर टुक हिम 7 days एंड 19 hours टू कम्प्लीट, लीडिंग एन इनडेलिबल मार्क ऑन एविएशन हिस्ट्री। एंड द ईयर 1948 इज ऑल्सो स्पेशल बिकॉज PEPS, that is PEPS, Patiala and East Punjab States Union got established.
और आज ही के दिन 1962 में अल्जीरिया अरब लीग का हिस्सा बना। इस लीग की स्थापना अरब राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और आज ही के दिन 1984 में पंजाब में सिख समुदाय के अशांत होने के बाद पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया।
In 1997, Mahesh Chandra Mehta, an environmental activist, he won the Ramon Magsaysay Award.
और आज ही के दिन साल 2000 में सियरा लियोन में सैन्य कार्यवाही द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त कराए गए। और आज ही 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। जनवरी 2002 में डेनियल पर्ल का कराची में अपहरण कर लिया गया था और 9 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी।
टू ऑल द हैरी पॉटर लवर्स, इन 2009 हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, द 6th फिल्म बेस्ड ऑन जेके राउलिंग्स पॉपुलर बुक सीरीज, गॉट रिलीज वर्ल्ड वाइड, कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेज विद इट्स मैजिकल स्टोरी टेलिंग। लेट मी आस्क यू सर फिरोजी, हैव यू सीन द हैरी पॉटर मूवीज?
काफी सारी देखी है, पर इतनी स्टोरीज हैं कि वो बहुत ज्यादा मिक्स मैच हो गया, बट इट इज ऑलवेज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस टू वॉच दैट मूवी।
एब्सोल्युटली, देर आर सो मेनी मूवीज बेस्ड ऑन हैरी पॉटर एंड द कैरेक्टर्स एंड द विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन दोज मूवीज।
और आज ही के दिन 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C17 के जरिए उपग्रह GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। और अब आपको बताएंगे उन शख्सियतों के बारे में जो आज ही के दिन इस दुनिया से विदा हुए या इस दुनिया में आए। और शुरुआत कर रहे हैं बाल गंधर्व से, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने रंगमंच पर अपने अभिनय की शुरुआत शकुंतला का चरित्र निभाकर की। इनका असली नाम नारायण श्रीपाद राजहंस था, लेकिन इन्हें बाल गंधर्व के नाम से अधिक जाना जाता है। ये नाम इन्हें भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंधर्व मराठी रंगमंच पर महिला चरित्रों को निभाते थे, क्योंकि उस वक्त महिलाएं रंगमंच पर किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती थी। आइए इनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं इन्हीं का गाया ये मराठी गीत।
अशुभ मानिता कैसे बचेगा, अशुभ मानिता कैसे बचेगा, अशुभ मानिता कैसे बचेगा, जगराज कारे दास जगर, जगराज कारे दास जगर, जगराज।
Today is the death anniversary of Robert Wadlow. He is also known as the Alton Giant and the Giant of Illinois. He was an American man who was the tallest person for whom there is irrefutable evidence. His height was 8 feet 11.1 inches and his weight reached 199 kilograms at the age of his death, which was 22nd. His great size and his continued growth in adulthood were due to hypertrophy of his pituitary gland, which resulted in an abnormally high level of human growth hormone. And he was taller than his father by the age 8, which is amazing for other people because this is very rare.
और आज ही जन्म दिवस है बादल सरकार का। ये अभिनेता, नाटककार, निर्देशक थे। इनका नाम महान नाटककारों मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और गिरीश कर्नाड के साथ लिया जाता है। इन्होंने भारी संख्या में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में नाटक किए। इनका एक नाटक बहुत फेमस हुआ जिसका नाम है पगला घोड़ा, और उसी के कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
अरे वाह, डबल की बाजी है, याद है ना?
18 बोले हो
शशिदा,
ये रहा। अरे बस रंग खलास। अरे किस बूते पे चिड़िया रंग बोला था?
करीब 2, 3, 6, 6, 2, 8, 10, 12, 13
दो काला खोलिए शशि बाबू,
ये लीजिए। 5 काला हो गया साधु बाबू, बस एक और खुल जाए तो इन लोगों की।
We are also remembering today Anton Chekhov, a Russian playwright and short story writer, because we are talking about writers. So his career as a playwright produced 4 classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. He renounced the theatre after the reception of The Seagull in 1896, but the play was revived to acclaim in 1898 by Konstantin Stanislavski's Moscow Art Theatre, which subsequently also produced Chekhov's Uncle Vanya and premiered his last 2 plays. And we are also remembering today Durgabai Deshmukh on her birth anniversary. She was an Indian freedom fighter, lawyer, social worker and politician. And she was an public activist for women's emancipation. She founded the Andhra Mahila Sabha in 1937. And let me tell you that the people who travel in metro in Delhi, Durgabhai Deshmukh South Campus Metro Station is named after her, and many more institutions and things are also named after her.
और आज ही जन्मदिवस है प्रभाष जोशी का। ये हिंदी पत्रकारिता के आधार स्तंभों में माने जाते हैं। इन्हें राजनीति और क्रिकेट पत्रकारिता के विशेषज्ञ भी माना जाता है। और इसके अलावा आज ही जन्मदिवस है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। ये भारतीय सेना के उच्च अधिकारी थे जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में शहीद हो गए। उस्मान नौशेरा के शेर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। ये भारतीय सेना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और साहसी सैनिकों में एक थे। इनकी जज्बे के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
And today is the birthday of Ashok Sen, an Indian theoretical physicist and distinguished professor at the International Center for Theoretical Sciences, Bangalore. He was among the first recipients of the Breakthrough Prize in Fundamental Physics for opening the path to the realization that all string theories are different limits of the same underlying theory. Today is also the birthday of Gabriel Iglesias, an American stand-up comedian and actor. He is also known as Fluffy, and he says that I'm not fat, I'm fluffy. And his specials, the stand-up specials on TV outlets, includes Hot and Fluffy as well.
और आज ही पुण्य तिथि है भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक बानो जहांगीर कोयाजी की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1943 में की।
एंड विद दैट वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM।
और दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और तन्वी खुराना को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।